एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद इंसानियत का सबसे पुराना और सबसे उलझा हुआ विषय है।
प्रेम।
प्रेम
एक ऐसा एहसास जिसे हम सब महसूस करते हैं, जिसके लिए हम बड़ी बड़ी चीजें करने को तैयार रहते हैं, पर जब कोई पूछता है कि ये है क्या, तो
शब्द कम पड़ जाते हैं।
हाँ, अक्सर शब्द कम पड़ जाते हैं।
और इसी मुश्किल सवाल से जूझने के लिए आज हमारे पास एक बेहतरीन किताब है, रोनाल्ड डी सूजा की लव ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
अच्छा।
और ये किताब मतलब प्रेम पे कोई रोमांटिक कविता नहीं लिखती, बल्कि एक दार्शनिक की तरह इसकी चीरफाड़ करती है और ऐसे सवाल उठाती है जो हमें अपनी सबसे गहरी भावनाओं पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं।
और ये आज के दौर में बहुत जरूरी भी है ना? एक तरफ हमारे पास डेटिंग ऐप्स हैं
हाँ,
जो हमें अनगिनत विकल्प देते हैं, और दूसरी तरफ अकेलेपन का एहसास बढ़ता जा रहा है।
बिल्कुल।
ऐसे में ये समझना कि प्रेम सिर्फ एक जादुई एहसास नहीं, बल्कि इसके पीछे जीव विज्ञान, दर्शन और संस्कृति का एक गहरा ताना बाना है, हमें शायद रिश्तों को देखने का एक नया नजरिया दे सकता है।
आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये कोई सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है,
नहीं,
बल्कि प्रेम के बारे में सोचने का एक औजार है।
जी
ये किताब हमें सिखाती है कि प्रेम के बारे में कैसे सोचा जाए, न कि ये बताती है कि क्या सोचा जाए।
तो फिर शुरुआत लेखक से ही करते हैं। ये रोनाल्ड डी सूजा कौन है और उनका दृष्टिकोण इतना अलग क्यों माना जाता है?
तो रोनाल्ड डी सूजा वो भावनाओं के दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ इमोशंस के एक बहुत बड़े विद्वान हैं।
अच्छा।
और उनकी सबसे दिलचस्प बात ये है कि वे उस सदियों पुरानी सोच को चुनौती देते हैं जो तर्क यानी रीजन
और भावना?
और भावना यानी इमोशन को एक दूसरे का दुश्मन मानती है।
अच्छा, वो आम धारणा कि दिल से नहीं दिमाग से काम लो, मतलब या तो आप तार्किक हो सकते हैं या भावुक, दोनों एक साथ नहीं।
ठीक वही, डी सूजा इस धारणा को सिरे से खारिज करती हैं।
हाँ।
उनका कहना है कि भावनाओं का अपना एक तर्क होता है, अपनी एक समझ होती है।
भावनाओं का अपना लॉजिक।
हाँ, वो बेतरतीब नहीं होती, इसलिए जब वो प्रेम के बारे में लिखती हैं तो वो किसी गुरु की तरह उपदेश नहीं देती, वो एक जासूस की तरह जीव विज्ञान, दर्शन और संस्कृति के सुराबों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर हमारे सामने रखती हैं।
ये बात तो सुनने में ही क्रांतिकारी लगती है। तो इस नज़रिए से लिखी गई किताब का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये किस बड़े सवाल का जवाब देना चाहती है?
किताब का जो सबसे बड़ा और आप कह सकते हैं चौंकाने वाला विचार है वो ये है कि प्रेम कोई एक सरल अकेली चीज नहीं है। डी सूजा इसके लिए एक बहुत ही अजीब सा शब्द इस्तेमाल करती हैं, सिंड्रोम।
एक मिनट, सिंड्रोम? ये तो किसी बीमारी से जुड़ा शब्द लगता है। क्या वो ये कह रही हैं कि प्यार एक तरह की बीमारी है? सवाल तो यही उठता है।
पर उनका मतलब वो नहीं है। जैसे किसी मेडिकल सिंड्रोम में कई अलग अलग लक्षण एक साथ मौजूद होते हैं,
जैसे बुखार, दर्द, कमजोरी।
बिल्कुल वैसे ही प्रेम भी भावनाओं, विचारों, इच्छाओं और व्यवहारों का एक जटिल मिश्रण है। इसमें जुनून भी है, देखभाल भी है, ईर्ष्या भी है और प्रतिबद्धता भी है। ये सब मिलकर प्रेम नाम का सिंड्रोम बनाते हैं।
मतलब सच्चे प्यार जैसी कोई एक परिभाषा खोजना ही बेकार है।
एकदम सही,
क्योंकि इसके कई रूप और कई हिस्से हैं।
जी, किताब का मकसद ही प्रेम को लेकर हमारी फिल्मी और रोमांटिक धारणाओं को तोड़ना है। ये किताब ये नहीं बताती कि प्यार कैसे पाएं, बल्कि ये समझाती है कि जब हम कहते हैं कि हमें प्यार हो गया है तो हमारे साथ असल में हो क्या रहा होता है।
बिल्कुल।
ये एक तरह की यात्रा है, प्राचीन यूनान के दार्शनिकों से लेकर आज के न्यूरोसाइंटिस्ट तक।
ठीक है, तो चलिए इस यात्रा में गहराई से उतरते हैं। आपने प्राचीन यूनान का जिक्र किया, वहां से डी सूजा क्या उठाती हैं?
वो इतिहास में झांकती हैं और प्रेम के तीन क्लासिक यूनानी रूपों की चर्चा करती हैं। ये हमें प्रेम के सिंड्रोम को समझने में मदद करते हैं। पहला है एरोस।
एरोस, ये तो मैंने सुना है। ये वो जुनूनी रोमांटिक प्यार है जिसके बारे में हमारी ज्यादातर फिल्में और गाने बनते हैं, है ना?
जी, ये अक्सर यौन इच्छा से जुड़ा होता है और किसी एक खास व्यक्ति पर केंद्रित होता है।
ओके।
दूसरा है फिलिया, यानी गहरी दोस्ती का प्यार।
गहरी दोस्ती?
हाँ, ये आपसी सम्मान, साझा मूल्यों और एक दूसरे की भलाई की इच्छा पर आधारित है। अरस्तू जैसे दार्शनिक तो इसे एरोस से भी ऊंचा दर्जा देते थे।
अच्छा, और तीसरा?
और तीसरा है अगापे। ये शायद सबसे अलग है।
ये क्या होता है?
ये निस्वार्थ, बिना शर्त वाला और सार्वभौमिक प्रेम है, जैसे मानवता के लिए प्रेम या कह सकते हैं ईश्वर का अपने भक्तों के लिए प्रेम। इसकी खासियत ये है कि ये किसी एक व्यक्ति के गुणों पर निर्भर नहीं करता, ये सबके लिए होता है। डी सूजा बताती हैं कि हमारे प्रेम के अनुभव में अक्सर इन तीनों का कोई न कोई मिश्रण होता है।
तो एक ही रिश्ते में कभी एरोस हावी हो सकता है तो कभी फीलिया। ये समझने के बाद किताब एक बहुत ही मुश्किल सवाल उठाती है।
जी,
क्या हमारे पास किसी से प्यार करने के कोई कारण होते हैं? ये सवाल सुनने में जितना आसान है, इसका जवाब उतना ही उलझाने वाला है।
और ये इस किताब का सबसे दिमाग घुमा देने वाला हिस्सा है। सोचिए, अगर हम कहते हैं कि हाँ, हम किसी को उसकी गुणों के लिए प्यार करते हैं,
जैसे उसकी बुद्धिमानी, उसकी दयालुता
या उसके मजाकिया स्वभाव के लिए, तो हमारा प्यार तर्कसंगत लगता है। पर इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है।
समस्या ये है कि अगर कल को वे गुण खत्म हो जाएं तो, या उससे ज्यादा बुद्धिमान और दयालु कोई और मिल जाए तो, क्या हमें तार्किक रूप से अपना प्यार उस नए व्यक्ति पर शिफ्ट कर देना चाहिए?
हाँ,
ये तो प्यार की उस भावना के ही खिलाफ है जिसमें हम कहते हैं कि मैं तुम्हें हर हाल में प्यार करूंगा।
सटीक, ये तो प्यार को एक तरह का सौदा बना देगा। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए।
ओके,
अगर हम कहते हैं कि हम बिना किसी कारण के प्यार करते हैं, बस यूं ही, तो क्या ये प्यार तर्कहीन और मनमाना नहीं है?
मतलब इसका तो ये हुआ कि हमारा प्यार किसी भी चीज पर आधारित ही नहीं है।
बिल्कुल,
मैं थोड़ा उलझ गया हूं। मतलब तो ये हुआ कि प्यार तार्किक भी नहीं है और अतार्किक भी नहीं है, तो फिर ये है क्या?
और यही इस पहेली की खूबसूरती है। डी सूजा इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती। वो दिखाती हैं कि यही विरोधाभास प्रेम के स्वभाव का केंद्र है। शायद प्यार तर्कों से शुरू होता है, पर फिर उन तर्कों से आगे निकल जाता है
और एक तरह की प्रतिबद्धता बन जाता है।
जी,
इस दार्शनिक पहेली के बाद वो विज्ञान की दुनिया में आती हैं। ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, इन सबका क्या रोल है?
डी सूजा इसके लिए एक बेहतरीन एनालॉजी देती हैं। वो कहती हैं कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी प्रेम का हार्डवेयर है।
हार्डवेयर,
हाँ, हमारा दिमाग, हमारे हॉर्मोन्स, हमारा विकास, ये सब हमें प्यार करने की क्षमता देते हैं। ये हमें कच्चा माल देते हैं।
लेकिन वे कहानी नहीं लिखते।
सही पकड़ा। प्रेम का अर्थ, उसका मतलब यानी उसका सॉफ्टवेयर, हमारी संस्कृति और हमारी कहानियां से आता है।
अच्छा,
इसको ऐसे समझिए कि जीव विज्ञान हमें खाली कैनवस और रंग देता है, लेकिन उस पर तस्वीर कौन सी बनेगी,
रोमियो जूलियट की या हीर रांझा की,
ये हमारी संस्कृति तय करती है।
और यहीं पर उनका सबसे शक्तिशाली विचार आता है, जिसे वो पैराडाइम सिनेरियो कहती हैं, यानी प्रेम की कहानियां।
ये इस किताब का सार है। बिल्कुल, डी सूजा का तर्क है कि हम प्यार करना सीखते हैं।
सीखते हैं,
हाँ, और ये हम अपनी संस्कृति से मिली कहानियों से सीखते हैं। फिल्में, उपन्यास, गीत, किस्से, ये कहानियां हमें एक तरह की स्क्रिप्ट देती हैं।
स्क्रिप्ट, कैसी स्क्रिप्ट?
कि प्यार में पड़ना कैसा महसूस होना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, दिल टूटने पर क्या करना चाहिए।
तो आप कह रही हैं कि जब किसी को लगता है कि उसे पहली नजर का प्यार हुआ है, तो वो कोई दैवीय या अनोखा एहसास नहीं, बल्कि
असल में किसी फिल्मी सीन की नकल है जो उसके दिमाग में बैठा हुआ है।
ये तो प्यार के पूरे जादू को ही खत्म कर देने वाली बात है।
ये सुनने में ऐसा लग सकता है, पर ये उससे ज्यादा गहरी बात है। सोचिए, जब शाहरुख खान DDLJ में सिमरन के लिए ट्रेन रोकते हैं, तो वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। वो भारत में करोड़ों लोगों के लिए प्यार की एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सच्चा प्यार ऐसा दिखता है, उसके लिए ऐसा करना पड़ता है।
और फिर हम अनजाने में अपनी जिंदगी में उसी स्क्रिप्ट को दोहराने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल, हमारा व्यक्तिगत अनुभव, हमारी जैविक प्रतिक्रियाओं जैसे दिल का तेज धड़कना और इन सीखी हुई सांस्कृतिक स्क्रिप्ट्स का एक मिश्रण होता है।
मुझे याद है, स्कूल के दिनों में लगता था कि प्यार का मतलब है बारिश में भीगना और गिटार बजाना। क्योंकि फिल्मों में यही देखा था। ये समझ अब आ रहा है कि वो मेरा अपना विचार नहीं, बल्कि एक सीखी हुई कहानी थी।
एकदम, और इसीलिए अलग अलग संस्कृतियों और समय में प्रेम की धारणा इतनी अलग होती है। प्रेम का एहसास सार्वभौमिक हो सकता है, पर उसे व्यक्त करने और समझने का तरीका हमेशा सांस्कृतिक होता है।
इस पूरी गहरी चर्चा के बाद अगर हमें इस किताब के कुछ मुख्य संदेशों को निचोड़ना हो तो वो क्या होंगे?
मेरे हिसाब से 4 मुख्य बातें हैं। पहली और सबसे जरूरी, प्रेम एक सिंड्रोम है, कोई एक अकेली भावना नहीं।
ठीक है,
ये हमें सच्ची प्यार की किसी एक परिभाषा को खोजने की निराशा से बचाता है और हमें इसके अलग अलग रूपों की इज्जत करना सिखाता है, दोस्ती का भी और जुनून का भी।
दूसरा संदेश जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा वो है जीव विज्ञान और संस्कृति के बीच का संतुलन।
जी,
हम सिर्फ अपने हॉर्मोन्स के गुलाम नहीं हैं, और न ही हम सिर्फ कहानियों के रोबोट हैं। हम इन दोनों का एक जटिल मिश्रण है।
और भारत में तो ये द्वंद्व बहुत साफ दिखता है। एक तरफ पारंपरिक विवाह की व्यवस्था है जो फिलिया और अगापे पर जोर देती है,
और दूसरी तरफ बॉलीवुड की रोमांटिक कहानियां हैं जो एरोस का जश्न मनाती हैं।
बिल्कुल। तीसरा मुख्य संदेश है कहानियों की ताकत, यानी पैराडाइम सिनेरियो का विचार। ये समझना कि हमारी गहरी से गहरी भावनाएं भी हमारी संस्कृति और हमारे समाज से कितनी प्रभावित होती हैं, ये एक बहुत बड़ी और विनम्र करने वाली बात है।
ये हमें अपनी उम्मीदों पर सवाल उठाने की ताकत देता है।
जी।
और आखिर में प्यार के कारणों का वो विरोधाभास, ये हमें प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है।
क्या प्यार सिर्फ किसी के गुणों की सराहना है, या ये एक बिना शर्त वाला वादा है जो उन गुणों के बदलने पर भी बना रहता है?
ये सवाल हर लंबे रिश्ते के केंद्र में होता है। इस किताब में ऐसे कई विचार हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं। कुछ खास पंक्तियों या विचारों पर बात करते हैं जो इसके सार को पकड़ते हैं।
एक केंद्रीय विचार जिसे हम दोहरा सकते हैं वो है, प्यार कोई एक एहसास नहीं है बल्कि इच्छाओं, विश्वासों और भावनाओं का एक सिंड्रोम है जिसकी पटकथा हम अपनी संस्कृति की कहानियों से सीखते हैं।
ये तो उनके पूरे तर्क को एक वाक्य में समेट देता है।
जी।
और ये विचार भी बहुत शक्तिशाली है। हम प्यार करने के कारण नहीं ढूंढते, बल्कि उस प्यार को व्यक्त करने और सही ठहराने के तरीके ढूंढते हैं जो पहले से मौजूद हैं।
वाह।
ये कारणों वाली पूरी धारणा को ही पलट देता है। इसका मतलब है कि प्यार पहले होता है, तर्क बाद में आता है उसे समझाने के लिए।
और अंत में ये पंक्ति जो प्रेम के असर को दिखाती है, किसी से प्यार करने का मतलब है कि आप उनके प्रति एक खास तरह से कमजोर हैं।
कमजोर हैं।
हाँ, क्योंकि उनकी भलाई आपकी अपनी भलाई का हिस्सा बन जाती है।
ये बात तो गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। हम हमेशा प्यार को ताकत समझते हैं, पर यह किताब उसे एक तरह की कमजोरी भी बता रही है। एक ऐसी कमजोरी जिसे हम जानबूझकर चुनते हैं।
बिल्कुल, क्योंकि उसमें हमारी पहचान का विस्तार होता है। ये दिखाता है कि प्रेम हमारी मैं की सीमाओं को कैसे धुंधला कर देता है।
ये सब विश्लेषण तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही अकादमिक नहीं है? मतलब असल जिंदगी में कोई झगड़े के बीच में ये सोचता है कि अरे हमारी प्रेम की पटकथाएं अलग अलग हैं?
हाँ, आपका सवाल बहुत जायज है। जाहिर है झगड़े के बीच में कोई ये सब नहीं सोचेगा।
हाँ,
लेकिन बाद में जब मन शांत हो तो ये विश्लेषण बहुत मदद कर सकता है। इसका सबसे व्यवहारिक कदम है अपनी खुद की प्रेम कहानी का विश्लेषण करना।
कैसे?
हर कोई खुद से पूछ सकता है, प्रेम को लेकर मेरी उम्मीदें किन कहानियों से बनी हैं? क्या मैं DLDJ की स्क्रिप्ट जीने की कोशिश कर रहा हूँ जबकि मेरा पार्टनर एक अलग, ज्यादा यथार्थवादी कहानी में विश्वास रखता है?
अच्छा, तो ये हमें झगड़े की जड़ तक पहुँचने में मदद कर सकता है। हो सकता है झगड़ा इस बात पर ना हो कि किसी ने फोन नहीं उठाया।
हाँ।
बल्कि इस बात पर हो कि एक साथी के लिए प्यार का मतलब है हर पल जुनून।
हाँ।
और दूसरे के लिए साथ और स्थिरता।
दोनों की स्क्रिप्ट ही अलग है।
एकदम सही। ये समझ हमें एक दूसरे के प्रति ज्यादा एम्पैथेटिक यानी सहानुभूतिपूर्ण बना सकती है। और दूसरी व्यावहारिक बात, ये हमें अलग अलग तरह के प्यार को महत्व देना सिखाती है। हमारी संस्कृति एरोस पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन ये किताब हमें दोस्ती यानी फिलिया और निस्वार्थ देखभाल यानी अगापे के गहरे मूल्य की याद दिलाती है,
जो हमारे परिवारों और समाज को जोड़े रखने के लिए कहीं ज्यादा जरूरी है।
बिल्कुल।
तो इस पूरी चर्चा से ऐसी कौन सी एक बात है जो आपके हिसाब से हमेशा याद रखी जानी चाहिए? मेरे लिए ये विचार कि हमारी भावनाएं उतनी निजी और मौलिक नहीं है जितना हम सोचते हैं।
वे हमारे आसपास की दुनिया, हमारी कहानियों और हमारी संस्कृति से आकार लेती हैं। ये एक विनम्र करने वाला और साथ ही सशक्त बनाने वाला विचार है, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट सीखी जा सकती है
तो उसे बदला भी जा सकता है।
हाँ।
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि प्रेम के बारे में गहराई से सोचने से उसका जादू खत्म नहीं होता।
अच्छा।
बल्कि उसकी जटिलता और खूबसूरती के लिए हमारी प्रशंसा और बढ़ जाती है। डिसूजा हमें दिखाती हैं कि प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हमारे साथ हो जाती है।
तो ये एक पैसिव चीज नहीं है?
नहीं, ये एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है जिसमें हम सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और जिसे हम खुद बनाते भी हैं। ये हमें एक पैसिव विक्टिम की जगह एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।